अब आपके बीच में मैं उपस्थित करने जा रहा हूं हमारे भ्राता बीके राजीव गुप्ता। सन 36 से लेकर 50 तक और 50 के बाद अभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमारा यज्ञ जब भारत में प्रवेश किया, आबू में पहुंचा, उसकी तारीख गई। उस दौरान क्या था, कैसा था, सब क्या करते थे, इसकी तह में जाते हैं। हमारे यहां माना गया है कि नदियां जब सागर में मिलती हैं तो वो पवित्र धाम माना जाता है, और जहां उसका स्रोत होता है वो भी पवित्र धाम माना जाता है। गंगा सागर में मिलती है वहां गंगा सागर कहा जाता है, और जहां से निकलती है उसे गंगोत्री। तो धर्म वाले लोग उन पवित्र स्थानों पर जाते हैं। हमारा धर्म स्थान इस तरीके का नहीं है, लेकिन भावनात्मक है। यज्ञ कैसे शुरू हुआ, कहाँ था, क्या हो रहा था, उसकी हमारे मन में उत्सुकता रहती है। हमारे भाई बीके राजीव गुप्ता स्पार्की फैकल्टी हैं, फैकल्टी मैंने अध्ययन कराने का काम करते हैं, मुंबई से हैं, और बड़ी गहराई से जिस चीज का छोर पकड़ते हैं उसका सिरा लाए बिना वो छोड़ते नहीं, इतनी उनमें लगन है। तो उनके खजानों में से कुछ खजाना हमारे बीच में वो बांटने के लिए आए हैं। हम लोग बड़े प्यार से और यज्ञ के उस काल को देखें जब हम यज्ञ में नहीं थे, लेकिन यज्ञ तो था। हमारी बुद्धि को हम जैसे पिछले काल में यानी सुवर्ण काल में ले जाते हैं, और भविष्य काल में अर्थात फिर से सुवर्ण काल में ले जाते हैं, ऐसे यज्ञ के उस काल को बीच में हमें ले जाने के लिए हमारे सारथी आए हैं, बीके राजीव गुप्ता। अब ये मंच आपका है।
ओम शांति। तो बात चल रही थी यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट की। तो क्या है यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट, थोड़ा सा हम एक ब्रीफ आउटलाइन देंगे, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम थोड़ा चंद शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहां 14 वर्ष की तपस्या चली 1936 से लेकर 1950s तक। तो प्राय यज्ञ हिस्ट्री ये प्री पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले वो 14 वर्ष की भट्टी में क्या क्या हुआ और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, इसके ऊपर डील करता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्स एंड फिगर का क्या होगा, तो एक बार अगर हमारे पास ऑडियो वीडियो फाइल फॉर्मेट्स फोटोग्राफ्स अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इस यज्ञ हिस्ट्री डेटा से भविष्य में मूवीज टेलीविजन एपिसोड्स डॉक्यूमेंट्रीज एनिमेटेड फिल्म्स बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर वाला जो डेटा हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी विघ्न था इस यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1930 या 1940 की, तो ये डेटा हमें कौन बता सकता है, यह वही व्यक्ति बता सकता है जो कम से कम 10 से 15 वर्ष की आयु का रहा हो मिनिमम। तो अगर 10 से 15 वर्ष और पीछे चले जाते हैं, 1930 के पीछे या 1940 के पीछे चले जाते हैं, तो हो जाता है 1920। तो 1920 से लेके आज क्या चल रहा है, 2022, लगभग कितने वर्ष हो गए, 100 वर्ष। तो जिस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष के आसपास होगी वही हमें यज्ञ हिस्ट्री का डेटा दे सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं, सोच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो जो दादियां हैं जो अभी जस्ट एक्सटिंक्ट के वर्ज पर हैं, और ऐसे कुछ लोग जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, उनसे डेटा इकट्ठा करना, और हमारे यज्ञ की कुछ पुरानी बिल्डिंग्स, उसमें से आज एक बिल्डिंग का हम वीडियो फॉर्मेट देखेंगे जो स्पेशली पाकिस्तान से आपके लिए मंगवाया गया है, और मैं समझता हूं यज्ञ में पहली बार ये आपके सामने आज प्रेजेंट किया जा रहा है डायमंड हॉल के इस मंच पर, तो भी हम देखेंगे। तो उन बिल्डिंग्स को यहां बैठे बैठे लोकेट करना, अभी भी कुछ बिल्डिंग्स जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि अगर हमने डेटा इकट्ठा नहीं किया तो सारा का सारा डेटा समझिए कि एक्सटिंक्ट या लॉस्ट। तो ये कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे यज्ञ हिस्ट्री में, और मैं बाबा का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, ये मैं कोई एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा हूं, इसमें बाबा की बहुत 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 हेल्प मिली है। जहां जहां पे हम अटके वहां पता नहीं सामने से ही सॉल्यूशन या समाधान आ जाता, ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा हमसे करवा रहे हैं। तो इस डेटा का बहुत ही महत्व है। आपने एक अद्भुत जीवन कहानी पढ़ी होगी जगदीश भाई की, सबने पढ़ी होगी, हम सबने पार्ट वन पार्ट टू, और सच में वो अद्भुत जीवन कहानी है। लेकिन सोचिए उसी जीवन कहानी को चित्र के रूप में या वीडियो के रूप में आपके सामने आज के जनरेशन के हिसाब से रख दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम सोच सकते हैं। तो ड्रामा अनुसार मैं कहूं या बाबा की मैं हेल्प कहूं, उस समय यज्ञ अद्भुत जीवन कहानी में जितने भी लगभग पात्र हैं सबके फोटोग्राफ, कुछ डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं के किसी न किसी फॉर्म के रूप में, चाहे बिल्डिंग्स हो, वो सारे वीडियोस ऑडियोस ऑलमोस्ट किसी न किसी फॉर्मेट में आ चुके हैं। और स्पार्क इसका एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, एक तो ये बात थी। अब इसकी शुरुआत कहां हुई, थोड़े समय आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो हम समझ पाएंगे। तो 2007 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में ब्रह्मा कुमारीज के झाड़ और गोले के चित्र और कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए। अब ये डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लाइब्रेरी में कैसे पहुंचे, तो जब 14 वर्ष की भर्ती चल रही थी, तो आपको याद होगा 1940s में ब्रह्मा बाबा तभी भी सेवाएं करते थे, विक्टोरिया को और बहुत सारे राजा महाराजाओं को बाबा ने चित्र भेजे थे, झाड़ और गोले के चित्र भेजे थे, और फॉरेनर्स लोगों ने उन चित्रों को अब तक संजोकर संभाल कर रखा था। तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्यों ना इसमें और एक्सप्लोर किया जाए। तो 2007 में ये चित्र मिले, और 2008 में ऑस्ट्रेलिया की एक बहन थी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम था वेंडी सर्जेंट, और उन्होंने यज्ञ की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान और भारत लगभग उन्होंने 8 महीने पूरा टाइम डेडिकेट किया, और इंडिया और पाकिस्तान की नेशनल आर्काइव से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, उस समय के न्यूज़पेपर, न्यूज कटिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज कटिंग्स, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, और उस पर उन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया द आर्काइव प्रोजेक्ट के नाम से लगभग 2010 के आसपास। और तभी दादी जी भी, आपने देखा होगा दादी जानकी जी के कुछ चित्र देखे होंगे, दादी जी भी कराची और हैदराबाद तभी होकर आई थी। लेकिन ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि जो जो लोग, सिस्टर माला भी थी, ऐसे जो जो कुछ डबल फॉरनर्स जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ घटनाएं घटी और सबके सब चल बसे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, सबके सब मतलब ऑलमोस्ट, ऐसे नहीं कहूंगा कि सबके सब, अभी कोई नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि यज्ञ हिस्ट्री का डेटा अगर डबल फॉरनर लिख रहा है तो उसमें त्रुटियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी त्रुटियां जो थी, एरर्स थे, उसको करेक्ट भी किए गए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं बाबा का कि बाबा ने मुझे सही टाइम पर इस प्रोजेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया। मैं इसमें और भी शुक्रगुजार हूं कुछ लोग जो फॉरेन से भी संबंधित है, सिस्टर तामाजिन रामसिंह जो रॉबिन रामसिंह की डॉटर हैं, उनका उन्होंने भी काफी मेल कम्युनिकेशन के थ्रू और कन्वर्जेशन के थ्रू असिस्ट किया। रमेश भाई फोटोग्राफी डिपार्टमेंट आप जानते होंगे, उनका भी सहयोग रहा, और बहुत सारी हमारी वरिष्ठ दादियां, सूर्या दादी, ऐसी भी कुछ दादियां जो 90 ईयर्स प्लस की थी, उनके इंटरव्यूज लिए गए। तो इस प्रकार से यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट जो है की शुरुआत हुई। बट अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस डेटा का यूज क्या है, इसकी यूजिबिलिटी क्या है। ये कौन से काम में आ सकता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो मैं आपको इसके 3 या 4 एप्लीकेशंस बताऊंगा, इसके बाद वीडियो की शुरुआत होगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से लोग इंटरनेट पे विजिट करते हैं, तो अभी एक जगह एक लाइन आई कि ओम मंडली बैंड, तो आपको मालूम है ओम मंडली संस्था की शुरुआत में नाम था। तो कई लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और नेगेटिविटी को प्रोपोगेट करते हैं कि हाँ भाई ओम मंडली तो बैंड किक कर दी गई थी। देखिए ये रहा, इंटरनेट पे आया है, ऐसे ऐसे आया है। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तब मालूम पड़ा कि ये तो केवल आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोगों ने उसको प्रमोट करना चालू कर दिया है, वो लोग जिनके मन में कुछ भी बातें होंगी संस्था को लेकर। और बाद में मालूम पड़ा कि 1938-39 ये 2 वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष थे संस्था के लिए। उस समय अल्लाह बख्श सुमरू जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उनका बाबा और मम्मा से मिलना जुलना हुआ करता था। और ये वो अल्लाह बख्श सुमरू थे जिनका सुभाष चंद्र बोस ने बहुत प्रशंसा की थी, बड़े ही ईमानदार और नेक नेता थे उस जमाने के। और वो ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं, उनकी एक गठबंधन की सरकार थी, कहते हैं कि बाबा बहुत लोग विरोध कर रहे हैं एंटी ओम मंडली वाले, क्या इस संस्था का नाम हम चेंज नहीं कर सकते? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे ये नाम मैंने नहीं रखा, ये तो लोगों ने नाम रखा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और बाद में संस्था का नाम चेंज हुआ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, पहले नाम अलग था ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे करके परिवर्तन हुआ। ये मैं बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है। अब अल्लाह बख्श सुमरू ने क्या किया, एनटीओ मंडली के लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफिशियली ओम मंडली को बैन कर दिया ऑफिशियली, और सबका ईगो सेटिस्फाई हो गया और एनटीओ मंडली वाले बहुत खुश हो गए कि हमारी विजय हो गई। बट अल्लाह बख्श सुमरू बड़े ही नेक दिल इंसान थे, उन्होंने इस बैन को कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और कुछ हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं, फिर एनटीओ मंडली वालों ने लेटर लिखे कि ये क्या किया आपने, बैन तो कर दिया लेकिन इस बैन को तो इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है, ये सरकार क्या काम कर रही है, बहुत चिढ़ गए थे। लेकिन उन्होंने कभी बैन को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा दादियां मिलते भी हैं, योग करने भी जाते हैं, कुछ इसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। तो कईयों के पास आधा ज्ञान होने के कारण क्या करते हैं, नेगेटिव डेटा को लोग प्रोपोगेट कर देते हैं, इसीलिए यज्ञ हिस्ट्री डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मैं कवर करूंगा जो मुझे याद आ रहा है, कई लोगों ने क्या किया, अब जगदीश भाई के जमाने की मैं बात बता रहा हूं, जो आपने ये जीवन कहानी पढ़ी है, अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, ये जगदीश भाई ने कैसे लिखी थी, मैं तो उस दशक में नहीं था, लेकिन जो लोग उस समय जब जगदीश भाई लिख रहे थे मौजूद थे, उनके भी हमने पर्सनल इंटरव्यू लिए। तो पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में जगदीश भाई दादियों को बुलाते, उनके सारे डेटा को रिकॉर्ड करते, उनके सारे इंटरव्यूज लेते, दादी क्या हुआ था, हर एक दादी को बुलाते, दादियां अपना जो है इंटरव्यू देती, उस आधार पे एक अद्भुत जीवन कहानी पब्लिश हुई है। कुछ बातों में हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, पॉसिबिलिटी है फैक्ट्स एंड फिगर को लेकर, लेकिन जगदीश भाई का उद्देश्य फैक्ट्स एंड फिगर से ज्यादा बाबा के चरित्र को प्रकाशित करना, वो उनका इंटेंशन ज्यादा था। अगर हम अद्भुत जीवन कहानी की बात करते हैं तो कैसे लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, मैं इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। तो ब्रह्मा बाबा का एक पार्टनर था, आप जानते होंगे बाबा का पार्टनरशिप में बिजनेस था, उसका नाम था, पूरा नाम था सेवक राम खूबचंद दासवानी, सेवक राम। अब इस व्यक्ति का कोई यज्ञ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस नहीं है, और हमारे पास सारे इंटरव्यूज हैं कि ये व्यक्ति कोई विशेष नहीं था, इसने तो सारा जो है कैश अपने पास रख लिया, ब्रह्मा बाबा को कुछ शेयर दिया, ब्रह्मा बाबा उदारवादी थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मम्मा के रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जिसमें बताया जाता है कि सेवक राम में बहुत बहुत कुछ शेयर अपने पास रखे, और बिजनेस में ज्यादा काम कौन करते थे, ब्रह्मा बाबा, सबको मालूम है। अब इस व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसे कुछ लोग, उनको लगा कि लगता है इस व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और मुझे अपनी एक पार्टी बनानी है, तो क्यों ना इस व्यक्ति को आधार बनाया जाए और इसके आधार पर मैं क्या करूंगा, पूरी अपनी एक पार्टी बनाऊंगा। और लोगों ने ऐसे किया भी और बहुत से लोगों को लोगों ने भ्रमित किया और ये प्रपोगेट किया कि बाबा जो है सेवक राम के अंदर आते थे और मुरलियां चलाई कराची में, और कई लोग मान भी गए और उनको लगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के पास सेवक राम जैसे एक नॉर्मल इंसान का डेटा तो होगा नहीं, तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि ऐसी व्यक्ति को उठाना और उसकी एक जीवन कहानी बनाकर अपनी कहानी को जोड़ देना। और लोगों ने ऐसे किया भी और कई लोग भ्रमित भी हुए। पर आश्चर्य की बात, हमारे पास छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन की जो डेटा है ड्रामा अनुसार सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। अब ऐसे लोगों से पूछा जाए कि क्या आप सेवक राम का एक फोटोग्राफ दे सकते हैं, आपको आश्चर्य होगा, दे डोंट हैव अ सिंगल फोटोग्राफ ऑफ सेवक राम। उन्होंने पूरी अपनी पार्टी बना के रखी है। अब ऐसे लोगों से अगर पूछा जाता, एक और आश्चर्य की बात है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि यही सेवक राम 25 फरवरी 1939 को हैदराबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट में आता है और ब्रह्मा बाबा के अगेंस्ट एफिडेविट फाइल करता है, एनटीओ मंडली से मिल जाता है। तो क्या परमात्मा ऐसे व्यक्ति के तन के अंदर आके मुरली चलाएंगे और अपने ही ज्ञान को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? सोचने वाली बात। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं, उनको मालूम है कि शायद संस्था के पास डेटा नहीं होगा, तो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा कुमारी बहन है ना, ये हिस्ट्री का डेटा छिपाती हैं, हमको बताते नहीं है। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि संस्था छिपाती है, लेकिन एनटीओ मंडली वाले तो नहीं छिपाएंगे जो संस्था के विरुद्ध हैं। तो उस जमाने के सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स, मीडिया में क्या चल रहा है, कौन से कोर्ट मुकदमे चल रहे हैं, उस व्यक्ति का कहीं जिक्र है ही नहीं। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वे निरुत्तर हैं। और ऐसी कुछ दादियां लकीली जो सरवाइव, जिनकी याददाश्त अभी भी है, जो 90+ हैं, उनसे इंटरव्यू लिया गया कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं, बोलते हैं ऐसे कोई नाम का व्यक्ति तो था ही नहीं यज्ञ में कभी। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, संस्था का 80% डेटा उठाया, 20% अपना ऐड कर दिया और लोगों को गुमराह भी किया और लोग गुमराह भी हुए। इसीलिए यज्ञ हिस्ट्री का फैक्ट्स, फिगर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पार्क कहीं ना कहीं इस डेटा को सुरक्षित रख रहा है ताकि भविष्य में इसकी उपयोगिता जो है सेवार्थ लाई जा सके। ये हुई एक बात। और लास्ट पॉइंट में बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कवर करूंगा, वो ये है कि आजकल आपने देखा होगा बहुतों के अंदर परमात्मा की प्रवेशता होने लग रही है, आप सभी जानते भी होंगे। तो कईयों ने पूछा कि भाई कैसे माना जाए कि परमात्मा की प्रवेशता होती है। आपको सरप्राइज होगा, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो साइकेट्रिस्ट जानते भी हैं, जिसे कहा जाता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोस। ऐसे बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर कोई आत्मा आती है, और भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे आपने देखा होगा कई क्लेम करते हैं कि माता जी आती हैं इनके शरीर में, आपने देखा होगा। हाँ, किसी किसी केस में आत्माओं की प्रवेशता होती है, हम मना नहीं करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ऐसे कुछ लोग हैं, वो क्लेम करने लगते हैं, उनको एक फीलिंग आती है कि मेरे अंदर कोई आत्मा आती है, और खूब कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि सामने वाला भी प्रभावित हो जाता। तो आप में से कोई कह सकता है भाई जी कैसे मैं मानूं कि सच में आत्मा आती है? ये भी तो हो सकता है सच में आत्मा आती हो, कोई मानसिक रोग ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको कैसे परखा जाए? तो उसका बड़ा ही आसान तरीका क्या है कि मान लीजिए मैं क्लेम करता हूं कि मेरे अंदर गुलजार दादी की आत्मा आती है, तो आप कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर गुलजार दादी की आत्मा आती है? मैं चाहूं तो वैसे एक्टिंग भी कर सकता हूं, गुलजार दादी जैसी आवाज भी निकाल सकता हूं, तो आप कैसे मानेंगे कि हमारे अंदर गुलजार दादी की आत्मा आती है? उसका बहुत सरल उपाय यह है कि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो केवल गुलजार दादी को मालूम है और राजीव भाई को नहीं मालूम है, अगर राजीव भाई वो डेटा बता पाता है या गुलजार दादी की जो है अपने नॉलेज डोमेन के बियॉन्ड अगर वो बातें बता पाता है जो केवल गुलजार दादी को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, तब तो हम यकीन कर सकते हैं ना कि हाँ भाई सच में अब हमें यकीन हुआ कि राजीव या फलाने भाई को कोई मानसिक रोग नहीं है, सच में गुलजार दादी की आत्मा इनके तन के अंदर आती है। सेम वैसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा के तन के अंदर शिव बाबा आते थे, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसी बातें बताई जो ब्रह्मा बाबा के नॉलेज डोमेन के बियॉन्ड की बातें थी, जो ब्रह्मा बाबा के क्षमता के बियॉन्ड की बातें थी। सृष्टि 5000, गीता का भगवान, पवित्रता की बातें, आत्मा की बातें, जो आज रिसर्च का विषय है, जो ब्रह्मा बाबा की एजुकेशन लेवल के बियॉन्ड की बातें हैं। तो ठीक उसी प्रकार यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट में ऐसे माइन्यूट से माइन्यूट डेटा इकट्ठा किया गया है कि 14 वर्ष की तपस्या कहां चली, कौन कौन से कमरे थे, कौन से कमरे में मम्मा रहती थी, बाबा कहां रहते थे, हमारे पड़ोसी कौन थे, उस जमाने के बहुत सारे फोटोग्राफ, बहुत सारे इंसिडेंट जो यज्ञ हिस्ट्री में आज तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग बात है मम्मा बाबा की, जो सुन के आप बहुत खुश होंगे, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। वो सब चीजें भी अभी तक हैं। तो जो अपने आप को क्लेम करते हैं उनको कह सकते हैं कि आप आइए इस पार्क के मंच पर इंटरव्यू दीजिए, तो हम आपको प्रमोट करेंगे। इट्स वेल एंड गुड। दो मिनट बाबा की याद में बैठे।
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
शांति। तो समरी यह है कि यज्ञ हिस्ट्री का डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कुछ चीजें जो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई है लेकिन इस आर्काइव प्रोजेक्ट में मौजूद है, ऐसे लोगों को क्वेश्चन किया जा सकता है जो अपने आप को क्लेम करते हो कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रवेशता होती है। पर मुझे पूरा विश्वास है ऐसे लोग कभी इस मंच पर या यहां पर आने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर सत्यता होगी तो वी आर वेरी ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी हमें बात समझनी चाहिए कि बाबा की मुरलियां चली हैं, 11 अप्रैल 1982 की मुरली है, जिसमें बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि बाबा की मुरली कहाँ चलती है, मधुबन में, और बाबा की प्रवेशता कहाँ पे होती है, मधुबन में। तो मधुबन को छोड़कर बाबा कहाँ जा सकता है। तो ये ज्ञान की स्पष्टता बहुत ही आवश्यक है, और जब भी बाबा की प्रवेशता होती है तो बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसी की आवाज का सहारा लेते हैं। गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं तो गुलजार दादी की आवाज होती है या अव्यक्त आवाज होती है? गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके प्रकाशमणि दादी की आवाज नहीं निकलती है, सोचने वाली बात है। तो ऐसी कुछ युक्तियां हैं जिससे हम समझ सकते हैं, और ये तो हमारे आस्था और अनुभूति का विषय है। कहीं ना कहीं अगर हमें सेवाओं के विस्तार में बहुत ज्यादा है और योग का हमने गहन अनुभव नहीं किया है तो भ्रमित होने के चांसेस हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं, आज इस मंच पर मैं समझता हूं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार हम ओम निवास के वो वीडियोस जो बाबा ने पहला हॉस्टल खोला था उसके वीडियोस हम देखने जा रहे हैं, जिसके एक समय ऐसा था कि एक फोटो मिलना भी दुर्लभ था, और आज वो सारे वीडियोस आपके लिए स्पेशली पाकिस्तान से मंगाए गए हैं। तो देखते हैं यज्ञ हिस्ट्री का एक छोटा सा एक वीडियो। ओम शांति।
अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया
ला। ओम शांति। जब भी यज्ञ इतिहास की बात बताई जाती है तब ओम निवास का जिक्र जरूर आता है। हमें ज्ञात रहे ओम निवास दो थे, हैदराबाद स्थित ओम निवास अलग था और कराची स्थित ओम निवास अलग था। हम जिक्र कर रहे हैं हैदराबाद स्थित ओम निवास की। इस बिल्डिंग का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि 1937 में यज्ञ की मैनेजिंग कमिटी की शुरुआत इसी ओम निवास से हुई थी। कैसे दिखता था ओम निवास, कैसे दिखाई देती थी उसकी खिड़कियां, दरवाजे तथा प्रांगण, इसका साक्षात्कार इस दुर्लभ वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओम निवास के इस विशद विवरण के पीछे उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को साकार के उन दिनों के साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि यज्ञ का बचपन अर्थात दादियों का बचपन अर्थात हम सभी का बचपन। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इन वीडियोस को देखने के पश्चात हम अपने आप को सहज ही ओम निवास के साथ अर्थात साकार के दिनों के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं यज्ञ में पहली बार ओम निवास के कुछ दुर्लभ वीडियोस। यज्ञ के शुरुआत के दिनों में दो बिल्डिंगों का नाम आता है, ओम मंडली और ओम निवास। जी हाँ, ओम मंडली संगठन का नाम भी था तो बिल्डिंग का नाम भी ओम मंडली हुआ करता था। मम्मा जब पत्र लिखती थी तो नीचे लिखती थी ओम राधे प्रेसिडेंट ओम मंडली एंड ओम निवास। जैसे कि बाबा मुरलियों में बताते हैं कि अक्सर कर जो बड़े लोग हुआ करते थे या अधिकारी हुआ करते थे तो नीचे लिखते थे योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। मम्मा भी जब पत्र लिखती थी अधिकारियों को तो सामने हम देख रहे हैं लिखती थी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। आखिर ओम निवास क्या था? ओम निवास सबसे पहला हॉस्टल था जो बाबा ने बच्चों के लिए हैदराबाद में खोला था। जब 1936 में बाबा कश्मीर चले गए तब इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्यभार बाबा ने मम्मा को सौंपा और मम्मा अपना इनपुट देती रही। इतनी कम उम्र में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की सेवा में
मम्मा मददगार बनी। ओम निवास की इस बिल्डिंग के निर्माण में बाबा ने स्वयं अपना धन लगाया। उस जमाने में 70,000 से लेकर लगभग 1,00,000 तक रुपया खर्च हुआ। दादियां बताती हैं कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कार्य 1936 से शुरू हुआ और दिवाली के दिनों में 1937 में बाबा ने इसका उद्घाटन किया। निवास के इस बिल्डिंग के एड्रेस में लैंडमार्क हुआ करता था नव विद्यालय। जी हाँ, ये वही नव विद्यालय है जो ठंडी सड़क पर स्थित है। अक्सर करके दादियां इसका जिक्र करती थीं और एड्रेस में भी यही लिखा जाता था। सामने आप देख रहे हैं ओम निवास के एड्रेस के नीचे नव विद्यालय का रेफरेंस दिया है। तो ये रहा आपके सामने वही नव विद्यालय जो अब ओल्ड सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के नाम से जाना जाता है। यह वही एरिया है जहां गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हुआ करती थीं, कचहरी या कलेक्टर हाउस इत्यादि, जहां पर ओम निवास था। सामने आप देख रहे हैं कचहरी के कैंपस से भी नव विद्यालय का टावर दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग को ओम निवास इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि टॉप फ्लोर पर लाइट का ओम हुआ करता था जो हैदराबाद स्टेशन से दिखाई देता था। याद रहे ओम निवास एक नहीं दो थे। हैदराबाद का ओम निवास अलग था, कराची का ओम निवास अलग था। हम इस हैदराबाद ओम निवास की बात कर रहे हैं। आइए चले ओम निवास की गलियों में। ये गलियां उन दिनों की याद दिलाती हैं जब इन गलियों से दादियां गुजरा करती होंगी। दादी जी ओम निवास की यात्रा पर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। की गलियों में प्रवेश करते ही कुछ पुरानी खूबसूरत इमारतें जो आज भी वैसे की वैसे ही खड़ी होकर उन दिनों की यादों को ताजा कर देती हैं। इनकी नक्काशी और खूबसूरती तथा रॉयल्टी हम स्वयं ही समझ सकते हैं। इन्हीं गलियों से गुजरते हुए कितनी नबाल दादियों की नजर इन इमारतों पर पड़ी होगी। इतना ही नहीं, ये गलियां यज्ञ में ओम निवास के पिकेटिंग की भी साक्ष्य है। पिकेटिंग का ये चित्र आपने जरूर देखा होगा। पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है वह ओम निवास ही है। ओम निवास के आसपास की गलियां। ओम निवास में प्रवेश होने के लिए दो दरवाजे हैं और ओम निवास से निकलने के लिए पिछला दरवाजा। आइए हम भी उन सीढ़ियों का आनंद उठाते हुए ओम निवास की गलियों की ओर प्रस्थान करें।
निवास में प्रवेश करने वाली गली तथा सामने हम देख रहे हैं मेन रोड जो कि ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। कुछ पुरानी इमारतों के नक्काशी युक्त दरवाजे समय की चपेट में अभी यह उस अवस्था में नहीं रह गए हैं, क्योंकि उन जमाने में ये गलियां काफी स्वच्छ और साफ सुथरी हुआ करती थी और हैदराबाद बहुत ही साफ सुथरा और एक स्वच्छ शहर हुआ करता था। ओम निवास के पड़ोसी मकानों के दृश्य जो आज भी वैसे के वैसे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं ओम निवास के अंदर का नजारा कि वर्तमान समय ओम निवास कैसे दिख रहा है। और हम प्रवेश कर रहे हैं सीधे ओम निवास के अंदर। ओम निवास का वह आंगन जो कभी ओम की ध्वनि से गुंजायमान हो जाता था, पहले यह आंगन काफी चौड़ा हुआ करता था और ऊपर में कमरे बाद में जुड़े गए। तथा छोटे छोटे बच्चे शोभा में चार चांद लगाते थे। सामने हम देख रहे हैं ओम निवास के स्टूडेंट ब्रज पुष्पा दादी, ईशु दादी, कमलमणि दादी, गुलजार दादी, सरला दादी बेंगलुरु। टीचर्स बहनों में भूरी दादी, दादी चंद्रमणि, दादी प्रकाशमणि, आज भी ओम निवास के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। सामने आप ओम निवास के टॉप फ्लोर का वही बरामदा देख रहे हैं जो आज सीमेंटेड ब्लॉक से सील कर दिया गया है। उन दिनों यह सीमेंटेड ब्लॉक्स नहीं हुआ करती थी, अभी उस बरामदे को कमरों में तब्दील कर दिया गया है। लकड़ी की खिड़कियों के दरवाजे और उनकी नक्काशी आज भी बिल्कुल वैसी ही है, उनमें कोई भी अंतर नहीं आया है। सामने गॉथिक शैली में बनाई गई खिड़कियों के कुछ पिलर्स ऐसे दिखाई देते थे। ओम निवास की सीलिंग सामने आप देख रहे हैं, आज भी वही पुरानी टाइल्स बिल्कुल वैसे की वैसे ही। ओम निवास के एक कमरे का दृश्य, वही पुराने दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल वैसे की वैसे ही। कल्पना कीजिए कि अगर आप भी ओम निवास के विद्यार्थी होते तो उस समय का दृश्य कैसे होता। आप देख रहे हैं ओम निवास टू स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर पर 12 बड़े कमरे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 12 बड़े कमरे, सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर पर बड़ा हॉल और बरामदा। ग्राउंड फ्लोर पर कौन कौन रहता था? ब्रह्मा बाबा, बड़ी दीदी और प्रकाशमणि दादी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। नीचे किचन की व्यवस्था हुआ करती थी। फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम हुआ करता था। सामने हम देख रहे हैं चंद्रमणि दादी बच्चों को पढ़ाते हुए, ये फर्स्ट फ्लोर का ही चित्र है। ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं उसमें से एक बच्ची बेंगलोर की सरला दीदी है और दूसरी बाबा की लौकिक पुत्री सूर्या बहन। इस चित्र में जो खिड़कियां हैं बड़े गौर से देखिए। जी हाँ, ये वही खिड़कियां हैं जो आपने अक्सर इस चित्र में देखा होगा। पांच टीचर्स बहनें जो हर एक ग्रुप को संभालती थी। सामने आप देख रहे हैं मिठू दादी, प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, कला बहन और शीतलमणि बहन। इसके पीछे जो दरवाजा दिखाई दे रहा है उसे गौर से देखिए। ऐसे ओम निवास में कई दरवाजे हुआ करते थे।
हम सब कराची में आ गए हैं। कराची में आ गए तो बहुत पीसफुल लाइफ सभी की। बाबा ने एक बोर्डिंग बनाया था जिसमें कन्या और कुमार छोटे छोटे थे, तो हम पांच बहनें थी जिसको बाबा ने मुकरर किया था। चंद्रमणि, मैं, रामा कुमार का, और दो और बहनें थी जो छोटे छोटे बच्चे बाबा ने कहा तो बचपन से इसके संस्कार अच्छे होंगे तो बड़े होकर के सारे विश्व का कल्याण करेंगे। तो जो भी माताएं आती थी उनको कहा आप शुष्क बच्चे दे दो, परवरिश बाबा ही करेंगे। ऐसे ही जिन्होंने को दिया बच्चे दिया उसके टीचर बाबा ने हमको मुकर किया। तो बाबा की उस समय दूसरी बिल्डिंग भी बनी थी तीन मंजिल की, उसमें हम सभी को रखा। उसमें बाबा रोज आता था और आकर के बच्चों को ज्ञान सुनाता था। हम भी उनको परवरिश देते थे, स्नान वगैरह सब करा करके बाबा के बच्चों की बहुत ख्यालत रहती थी कि बच्चे मेरे शहजादे हैं और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रोज बाबा चक्कर लगाते थे, मम्मा भी चक्कर लगाती थी। इस रीति से बोर्डिंग भी हुआ और रोज सुबह में उसको सैर कराने बगीचे में ले जाते थे। तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल रखता था बाबा, ड्रिल भी कराता था बच्चों को। इस रीति से ये चला।
अभी हम देख रहे हैं ओम निवास के बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म में, बड़े ही रेयर फोटोग्राफ्स।
तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर।
इन बच्चों का यूनिफॉर्म ब्लू कलर का है जिन पर ओम लिखा हुआ है। ओम की इतनी धुन लगी हुई थी कि बच्चे भी बाबा को ओम बाबा कहते थे। अभी हम देख रहे हैं ओम निवास का कोर्टयार्ड या आंगन, बहनें आपस में ज्ञान चर्चा करते हुए। इनके पीछे रीड्स की चटाई नुमा ब्लाइंड जिससे गर्मियों में शीतलता बनी रहती है। हैदराबाद का परिवार और इनके पीछे वही ब्लाइंड दिखाई दे रहा है जो कि ओम निवास में लगा हुआ है। आंगन में माताएं बच्चों के साथ, कई शिक्षा अधिकारी ओम निवास में विजिट कर चुके थे, वे आकर ओम निवास में रुकते भी थे। सैयद मीरान मोहम्मद शाह जो कि सिंध असेंबली के स्पीकर भी हुआ करते थे, वे भी विजिट कर चुके थे। सामने हम देख रहे हैं प्रोफेसर एस एन फेरवानी जी जो शिकारपुर के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट या शिक्षा अधिकारी थे तथा साथ में वे हिंदू नेता भी थे। ये ओम निवास से इतने प्रभावित थे कि ओम निवास पे इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जो न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुए थे। इस लेख में उन्होंने लिखा है ओम निवास अ मॉडर्न गुरुकुल फॉर गर्ल्स। गौरतलब है फेरवानी जी ओम निवास को एक मॉडर्न गुरुकुल की उपाधि दे रहे हैं। वे ओम निवास की स्वच्छता से बड़े प्रभावित थे। बच्चों को शुद्ध अन्न के अलावा बाजार की कोई भी चीजें नहीं खिलाई जाती थी। वे कहते थे हैदराबाद के पेरेंट्स को इस बात पर गर्वान्वित होना चाहिए। इस प्रकार हमने ओम निवास के बारे में बहुत कुछ बातें जानी। आने वाले एपिसोड में हम ओम निवास की दिनचर्या तथा दादियां ओम निवास के बारे में क्या कहती थी उन अमूल्य अनुभवों को सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कैसा लगा? आपकी तालियां बताएंगी कैसा लगा। हमारे भाई ने हमको हमारे आदिकाल के, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय की बात हमारे लिए बताई और
ये हमारे मन को बहुत प्रफुल्लित करने वाली है। राजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी पिछली यादें, बाबा बोलते हैं ना बचपन के दिन भुला न देना, उस तरीके से अब आपके योग में कभी कभी ओम निवास भी घूम आया करिए, बहुत अच्छा लगेगा।